जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी धन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी धन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी धन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी धन वल्लभ गिरिवर धारी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी धन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Jaya Radha Giri Dhari Radha Giri Dhari Radha Jaya Jagannatha Jagannatha Balajeva Jaya Subhadra Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. प्रभुपाद महाराज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तेन भवति नेष्टति श्रीमद् भागवतम अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 29 में प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं है, इसलिए 30 नंबर का श्लोक पर व्याख्या होगा दादा, और 29 और 30 का लिंक है, इसलिए दोनों श्लोक साथ में लिखा है। उच्चारण हम दोनों का ही करेंगे। सदा कनक सदा देवा पयात आहा इति सुक्रुषु जहर्षु ये च पंच आदय कौन पा तो अघ बांधवा तत्सुत्वा तत्सुत्वा भगवान कृष्ण तो अव्यय स अर्भवत्सकम् शोण चिकित्स आत्मनम् तरसा विवृधे गले सदा घन सदा देवा भया देहाति सुकृशो जौहुर्शुर्शेष पंचाधा कौन पास्तवग बांधवा तत्सुत्वा भगवान कृष्ण तवय सवृगवत्सकम् शूण चिकीर्षर आत्मनम् तरसा विवृधे गले सदा घन सदा देवा भयाधेहादि सुकृशो जहर्षुर्येष कंसाघान कोणपास्तरंग बांधवा तत्सुत्वा भगवान कृष्ण तव वयस भर्तवत्सकम् शूण चिकीर्षर आत्मनम् तरसा विरुधे गले सदा घन सदा देवा भया देहाति सुकृशो जहर्षेषु पंचाघा कौन पास्तवग बांधवा तत्सुत्वा भगवान कृष्ण तव वय सार्ववत्सकम् शूण चिकीर्षार आत्मनम् तरसा भवर्धे गले बोलिए श्लोक में आए हुए शब्द अर्थ इस प्रकार है सदा उस समय कं सदा बादलों के पीछे देवा सारे देवता भयात असुर के मुंह में कृष्ण के घुस जाने से डर कर आहा हाय हाय इति इस प्रकार सुकुर्शु पुकारने लगे जहर्षु प्रसन्न हुए ये जो कंस आदय कंस तथा अन्य लोग कौणपा असुरगम तो निसंदेह अघ बांधवा अघासुर के मित्र। 29 नंबर का अनुवाद इस प्रकार के, जब कृष्ण अघासुर के मुख में घुस गए तो बादलों के पीछे देवतागण हाय हाय करने लगे, किंतु अघासुर के मित्र तथा कंस तथा अन्य असुरगण अत्यंत हर्षित थे। 30 नंबर, तथा वह हाय हाय की पुकार सुनतवा सुनकर भगवान भगवान कृष्ण कृष्ण तो निसंदेह अव्यय कभी विनिष्ट न होने वाले स अर्भवत्सकम वाल बालो तथा बछड़े समेत चूर्ण चिकीर्ष उच्च राक्षस का जो उन्हें अपने पेट में इतर चूर्ण कर देना चाहता था। आत्मनम स्वयं तरसा जल्दी से विवर्धे बढ़ा लिया गले गले के भीतर। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद इस प्रकार है, जब अजय भगवान कृष्ण ने देवताओं को बादलों के पीछे से हाय हाय पुकारते सुना तो तुरंत ही उन्होंने स्वयं तथा अपने संगी ग्वाल बालों को असुर से बचाने के लिए जीर्ण वह सूर्ण कर देना चाहता था, उसके गले में भीतर अपना विस्तार कर लिया। तात्पर्य, कृष्ण के कार्य ऐसे होते हैं परित्रणाय साधुना विनायस दुष्कृतानम श्रीमद् भगवद गीता 4। कृष्ण ने असुर के गले में अपना विस्तार करके उसकी श्वास अवरुद्ध कर दी और उसे मार डाला। इसी तरह उन्होंने अपनी तथा अपने सिंगियों की असन्य मृत्यु से रक्षा की तथा देवताओं को भी उनके संताप से मुक्त किया। ओम अज्ञान्ति मिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप पदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु नवैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा श्री विशाखानुगांश हे कृष्ण करुणा सिंधु मंदो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि वंशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमं दिव्यासति सुंदराय तस्मै महाप्रेम प्रदायते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते, चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। जय श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। श्रीमद् भागवत का श्रवण हम करते आ रहे हैं। दशम स्कंध जो भगवान के मधुर लीला का वर्णन चलता है भी, उसमें अघासुर का प्रसंग भी चलता है। कल हमने सुना कि भगवान कृष्ण और उनके सखा और वत्स जो बछड़े से भी अघासुर के मुख में है, और पहले बछड़े और उनके सखा अघासुर के मुख में गए उनको बचाने के लिए, उसके बाद में भगवान ने प्रवेश किया। तो उस लीला का वर्णन करते समय सुखदेव गोस्वामी का चित्त उद्विग्न होकर थोड़ा हट गया वहां से लीला से, और इधर उधर थोड़ा देखने लगे। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी की नजर ऊपर गई तो वहां देवता इस लीला का भी दर्शन कर रहे थे, क्योंकि अघासुर इतना खल था जो असुरों को भी परेशान करते थे। तो उनका वध देखने के लिए देवता भी वहां उपस्थित हुए थे, लेकिन घन आच्छादन जो बादलों के पीछे रहकर वो लीला देख रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण ने अघासुर के मुख में प्रवेश किया, तुरंत उनके मुख से हा निकल गया, अब क्या होगा। तो इसलिए हमने ये दो श्लोक साथ में लिया है, क्योंकि 29 नंबर के श्लोक में भगवान ने श्रुत्वा तो क्या सुना उसका हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए 29 नंबर में जो देवताओं ने हाहा किया वो भगवान ने सुना, और सुना साथ साथ में वो भय भी हो गए, भयभीत देवता, अब क्या होगा। अघासुर के मुख में भगवान कृष्ण चले गए तो उनको देवताओं को ऐसा लगने लगा, क्या भगवान भी उन ग्वाल बाल के साथ उनका भी अनिष्ट होगा, अहित होगा या कुछ क्षति होगा। तो इसलिए उसके मुख से हाहा निकल गया, जैसे कोई प्रिय व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना होती है तो किसी व्यक्ति का ऐसा हाहा निकल जाता है हृदय से, हाहा। तो इसी तरह भगवान का अजगर अघासुर के मुख में जाने से देवताओं का हाहाकार निकल गया, और हाहा से भयभीत हो गए कि अब क्या होगा साथ साथ में। और साथ साथ में ये भी सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्रुत्वा, अन्य आचार्यों ने भी लिखा है कि श्रुत्वा असुरों ने भी सुना उस देवताओं का हाहाकार, हाहा, तो उनको ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मर गए, तो वह भी प्रसन्न हो गए। कंस आदि जिसमें आया है 29 नंबर श्लोक में, और अघ बांधवा अघासुर के जो मित्र थे वो सब हर्षित हो गए। तो उनको लगने लगा कि भगवान कृष्ण उनके मुख में चले गए हैं, तो मतलब मर गए। जो देवताओं को भय उत्पन्न होने लगा और असुरों को आनंद होने लगा, एक ही साथ दो घटना हुई, और 29 नंबर में उसी का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया, लेकिन प्रभुपाद ने उसका तात्पर्य नहीं दिया है। तो जब ये श्रुत्वा भगवान ने सुना कि देवताओं ने हाहाकार, उनको भय लगने लगा है, तब अघासुर के गले में भगवान ने विस्तार किया अपने आप को। और विस्तार करके उनका गला का जो श्वास लेने की प्रक्रिया थी वो रुकने लगी। और भगवान ने इतना विस्तार किया और साथ साथ में अघासुर भी अपना विस्तार कर रहे थे, लेकिन भगवान के सामने कितना विस्तार कर पाएगा वो। तो भगवान ने इतना विस्तार किया कि उनका गला ही ब्लॉक कर दिया, जिस तरह कोई नाला का ब्लॉक करते थे ढक्कन लगा के, उसी तरह भगवान ने विस्तार करके उनका गला ही बंद कर दिया, तो उनका श्वास लेना कठिन हो गया। तो श्वास रुंधन होने लगा और उनका प्राण निकल गया। तो एक साथ भगवान ने ये भी सोच रहे थे विचिंतनीय कि भगवान उन बाल बाल और बछड़े को बचाना था और असुर को मारना था, तो भगवान ने एक ही साथ ये दोनों कार्य किए। अपना विस्तार करके बाल बाल सखाओं को बचाया और बछड़े को बचाया और अघासुर का वध भी कर दिया। तो प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में प्रणीत रहा साधुना विनाशाय दुष्कृता, साधु की रक्षा की, अपने सखाओं का रक्षा किया और जो असुर थे अघासुर उनका विनाश भी कर दिया। ये अघासुर जो पाप का राशि था, पुंज था, अघ मतलब पाप, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवदगीता में कई जगह पर अनघ कहा है, मतलब पाप रहित है। अर्जुन तुम पाप रहित है इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान बता रहा हूं। और इधर ये अघासुर है वो पाप का पूरा राशि था, पाप से बना हुआ, मतलब तो उनका परिवार ही ऐसा था। पूतना जो पत्नी ठाकुर कहते हैं को मिथ्या गुरु पूतना थी, जो वेश बनाकर आए थे गोपी का और आए थे कृष्ण को मारने के लिए, जो पाखंडी गुरु होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, छल करने के लिए दूसरों को अपने शिष्यों को छलाने के लिए बाहर से अच्छा दिखते हैं लेकिन उनका वास्तविक हेतु होता है कृष्ण को मारना, मतलब अपने आप को ही भगवान प्रस्तुत करना और भगवान को वास्तविक रूप में प्रस्तुत नहीं करना। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं जो उतना थी वो मिथ्या गुरु का प्रतीक थी, और जो फिर बाद में उनका भाई बकासुर वो कपट का प्रतीक था, कपट बाहर से अच्छा साधु और अंदर से कपट, बस बगला का वही स्वभाव रहता है, बाहर से उजला उजला जैसा और ध्यान धरता है लेकिन उनका ध्यान में वही रहता है कब बच ले और कब उनको निगल जाए। तो जहां मिथ्या गुरु होते हैं जहां वहां कपट अवश्य होगा, तो जहां पूतना होती है वहां ये बकासुर भी था, और जहां ये दोनों होते हैं वहां पाप निश्चित रूप से होता है। तो ये अघासुर उनका ही परिवार का अनुज था, बकासुर और पूतना का सअनुज, तो अघासुर उनका अनुज था और पाप से पूर्ण था। इसी तरह भगवान उन पूतना का भी वध किया, बकासुर का भी वध किया और इधर अघासुर का। जब वास्तविक भगवान कृष्ण को हम जानेंगे तब हमारे जो पूर्ण ज्ञान है, वास्तविक जो स्वरूप है वो प्रकाशित होगा। अगर जब तक हम कृष्ण को नहीं जानेंगे पूर्ण रूप से, तब तक हमारे हृदय में अनेक अनेक कामना रहेगी और कामना को पूर्ण करने के लिए ऐसे मिथ्या गुरु हमारे जीवन में आएंगे, और मिथ्या गुरु आने के साथ साथ हमारा कपट भी हृदय में प्रकट होगा और कपट के साथ पाप करने की प्रवृत्ति भी आएगी। लेकिन भगवान कृष्ण को अगर हम जीवन में लाएंगे तो ये तीनों तीनों नष्ट हो जाएंगे, जिस तरह भगवान ने नष्ट किया। और साथ साथ में देवताओं का भी जो भय था वो भी दूर किया। अभी प्रश्न ये होता है कि देवता भगवान को पूर्ण रूप से जानते रहे थे जो भयभीत हो गए, देखते हम बस जो भगवान के सखा थे वो निर्भय थे, बिल्कुल भय नहीं था, वो तो जानते थे और बात भी कर रहे थे कि ये लगता है अजगर है लेकिन देख लेते अंदर क्या है, गुफा समझ कर गए, उनको कोई भय नहीं था। वो सोच रहे कि हमारे साथ कृष्ण है ना, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए गोप सखाओं को कोई भय नहीं था। लेकिन जो देवता ऊपर से देख रहे थे उनको भय होने लगा भगवान के, अघासुर भगवान के मुख में जाने से, क्या उनको पूर्ण ज्ञान नहीं था भगवान के बारे में या उनको विश्वास नहीं था, यही वास्तव में देवताओं की स्थिति होती है। जो पूर्ण रूप से भगवान को समझने में धोखा खा जाते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं, इसलिए उनको विश्वास भी नहीं हुआ और हाहाकार करने लगे कि अभी भगवान के मुख में चले गए क्या होगा। तो देवताओं का भय दूर हुआ, लेकिन देवताओं की जो स्थिति है वो इसी प्रकार है। थोड़े से कहीं असुर उनको परेशान करने लगे तो उनका भय उत्पन्न होने लगता है, भय होने लगता है, और साथ साथ में भगवान कृष्ण के शरण में जाते हैं, लेकिन उनको पूर्ण रूप से न जानने के कारण उनको थोड़ा थोड़ा शंका भी रहता है। जो यहाँ पर शंका हुआ देवताओं को शंका होगा भगवान अभी अघासुर के मुख में गए हैं तो क्या होगा। जिस तरह और देवताओं का इधर पूरा देवता समाज है, यहाँ तक इंद्र के साथ ब्रह्मा और शिव जी नहीं है इस दृश्य देखने के लिए, क्योंकि वो तो जानते हैं ब्रह्मा जी और शिव जी, वो इस श्लोक में नहीं रहेंगे। बाकी सब सूर्य चंद्र आदि इंद्र सहित सभी देवता इसमें देख रहे हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान को नहीं जानते। और जानते हुए भी कभी कभी वो भोग में रहने के कारण, उनकी इंद्रिय तृप्ति करने के कारण वो इस अज्ञान रूपी अंधकार में फंस भी जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं इस दसवें स्कंद में हम सुनते हैं कि जब इंद्र ने बहुत वृष्टि की और भगवान ने रक्षा किया गोवर्धन धारण करके ब्रजवासी की, तत्पश्चात इंद्र आया भगवान के शरणों में सुरभि गाय लेकर और भगवान का अभिषेक किया और बहुत श्लोक में स्तुति भी की। और इस स्तुति से हम जान सकते कि इंद्र भगवान को पूर्ण रूप से जान गए, अभी ऐसा दोबारा गलती नहीं करेंगे। लेकिन फिर बाद में देखते हैं कि द्वारका लीला में जब कृष्ण नरकासुर का वध करके जब स्वर्ग में गए पारिजाति वृक्ष लाने के लिए, तब इंद्र ने मना कर दिया। वही इंद्र पहले स्तुति किए थे, भगवान का अभिषेक किया था कि आप ही आदि पुरुष है, आप ही सर्व कारण का कारण है, लेकिन फिर कि ये तो हमारी मिलकत है पारिजाति वृक्ष, यहाँ से आप नहीं ले जा सकते। तो भगवान को कौन मना कर सकता है, भगवान के साथ युद्ध भी किया उसी समय इंद्र ने पूरा देवता को मिलता, क्योंकि वो समझने लगे कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, हम उसको कैसे देंगे। तो भगवान का सामर्थ्य वो भूल गए अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण, भोग के कारण। तो भगवान के साथ युद्ध किया इंद्र ने और परास्त हो, फिर भगवान पूरा वृक्ष लेकर आए और द्वारका में स्थापित किया, सत्य भामों को प्रसन्न किया। तो इसी तरह जब इंद्र आदि देवता वो सब है, कभी कभी मोह में होने के कारण इस तरह भ्रम में पड़ जाते हैं और उनको शंका होने लगती है, क्या अभी भगवान अघासुर का वध कर पाएंगे, अभी तो उनके मुख में चला गए हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी श्रुत्वा भगवान कृष्ण, इधर भगवान शब्द दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कृष्ण को, क्योंकि सर्व समर्थ है भगवान कृष्ण, कुछ भी करने के लिए सामर्थ है भगवान को, सर्व ऐश्वर्य पूर्ण है और कोई भी कार्य किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में वो कर सकते हैं, चाहे वो अघासुर के मुख में हो, चाहे बाहर वो कहीं भी हो, जिस समय जिस चीज की आवश्यकता रहे वो भगवान उसको पूर्ण करने में किसी भी स्थिति पर विचार नहीं करते। और वहां तक के भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हर समय दिन वत्सल भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ भगवान शब्द कहकर उस देवताओं को भी संकेत दे रहे हैं कि आप जो सोच रहे हो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि यह भगवान है। आपको लगता है कि अघासुर के मुख में चले गए, लेकिन उसका कुछ कर नहीं पाएंगे अघासुर। तो भगवान इसी तरह अघासुर का वध करके सब बच्चों को लेकर बाहर आ गए। तो भगवान जब भक्तों का रक्षा करने की बात आती है तब तुरंत ही कुछ विचार न करके भक्तों की रक्षा करते हैं, जिस तरह प्रहलाद महाराज की नरसिंह भगवान ने रक्षा की। प्रहलाद महाराज का अनेक अनेक कष्ट दिया हिरण्यकश्यपु ने, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था प्रहलाद महाराज को। यहां तक हिरण्यकश्यपु के अंतक से सभी देवताओं कांपते थे, उनकी भ्रुकुटि हिलाने से सभी देवता थर थर कांपने लगते थे, लेकिन 5 साल का उन्हीं का बच्चा उससे कुछ भी भयभीत नहीं था हिरण्यकश्यपु। पूरे इंद्र चंद्र सब कांपते थे हिरण्यकश्यपु से, लेकिन 5 साल का बच्चा उनका ही पुत्र बिल्कुल निर्भय था, क्योंकि वह भगवान के शरण में थे। पर उनकी रक्षा की जब बात आई तब भगवान तुरंत ही प्रकट हो गए उनके सामने उनकी रक्षा के लिए। तो इसी तरह जब जरूरत होता है तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तुरंत प्रकट होते हैं। और साथ साथ में ऐसे भगवान कृष्ण के भक्त भी उनके शरणागत रहते हैं, उनको कोई भी भय नहीं रहता है, कोई भी चिंता नहीं रहती है, अवश्य रक्षे भी कृष्ण। जिस तरह महावेंद्रपुरी को आदेश दिया श्री गोपाल जी ने कि आप मेरे लिए चंदन लाइए, और कहां से? नीलाचल से मलय चंदन लाइए, और उड़ीसा जाकर नीलाचल जाकर वहां। उसी समय महावेंद्रपुरी की उम्र बहुत थी, वृद्ध थे, फिर भी भगवान ने आदेश दिया तो कुछ विचार नहीं किया। उनके शरणागत होने के कारण महावेंद्रपुरी तुरंत भगवान का आदेश पाकर तुरंत वहां से चलकर निकल गए। वहां उस समय कोई सुविधा नहीं थी ट्रेन की या बस की ऐसी, तो चलकर वृंदावन से चलकर नीलाचल तक वो चल दिए, क्योंकि वो भगवान के शरणागत थे। इसलिए भगवान का आदेश पाकर तुरंत वो निकल गए। और ऐसे ही भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। जब चंदन लेकर वापस आ रहे थे तो रेमण में पहुंचे और गोपीनाथ क्षीरेश्वर गोपीनाथ में जो पहले दर्शन दिए थे उनको, उनके लिए क्षीर चोरी किया था। वहां जब वापस आए तब वही भगवान कहने लगे कि भी जो चंदन आप ला रहे हैं वो इधर गोपीनाथ को लगा दो, क्योंकि आपको अभी कष्ट देना नहीं है दादा, क्योंकि आप मेरे शरणागत, मेरे आदेश का तुरंत पालन किया है। इसलिए आप गोपीनाथ में और गोपाल में कोई अंतर नहीं है, आप गोपीनाथ को चंदन लगा दो, मेरा जो शरीर है वो जो तप्त हो रहा था वो तुरंत शीतल हो जाएगा। तो इसी तरह जब महावेंद्रपुरी ने वहां गोपीनाथ को चंदन जो लाए थे 20 किलो तो 21 दिन या 17 मास तक वो घिस कर गोपीनाथ को लगाया और भगवान की सेवा की। इसी तरह शरणागत जो भक्त होते हैं उनकी भगवान अवश्य रक्षा करते हैं। ऐसे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि छे ही भक्त धन्य येना छाड़े प्रभु चरण, छे ही प्रभु धन्य येना छाड़े निज जन। ये भक्त धन्य है जो प्रभु के शरण कभी नहीं छोड़ते हैं किसी भी परिस्थिति में, और वो प्रभु धन्य है जो अपने भक्तों को कभी छोड़ते हैं, निज भक्तों को कभी नहीं छोड़ते हैं। कुछ भी अगर भगवान के शरण में कोई एक बार चला गया तो कुछ भी हो जाने के बाद भी भगवान उनको कभी नहीं छोड़ते। जिस तरह दक्षिण भारत की यात्रा में चैतन्य महाप्रभु निकले थे, उनके साथ था काला कृष्णदास, तो रामेश्वर के पास से जब पहुंचे तो वहां चैतन्य महाप्रभु वहां रुके कुछ समय के लिए। तो वहां एक ग्रुप आया था जो भक्तराशी ग्रुप था, वो जो जंगल में ज्यादा करके निवास करते थे, और अन्य लोगों को स्त्री का लालच देकर वो फंसा कर अपने ग्रुप में शामिल करते थे। तो वहां जहां चैतन्य महाप्रभु रुके थे वहां वही ग्रुप रुका हुआ था। तो महाप्रभु जो साक्षात भगवान कृष्ण का अवतार है उनके साथ उनका संग नीलाचल में कर रहे थे, और साथ साथ में कई दिनों से चल रहे थे काला कृष्ण दास। भगवान का संग कर साथ होने के बाद भी उस ग्रुप के वो स्त्रियों के साथ वो फंस गए, फंसने के साथ उसी दल में वो शामिल हो गए। तो पूरा दिन उनके साथ रहे और रात भर वो आया नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु विचार के लिए किधर गया काला कृष्ण दास, तो मेरे सेवा करने के लिए आया था इधर। तब पता चला महाप्रभु को, ये तो उनके साथ चले गए हैं। तब सुबह होते ही महाप्रभु गए उस दल में, जो उनके साथ झगड़ा युद्ध भी करना पड़ा उन दल के साथ चैतन्य महाप्रभु, और काला कृष्ण दास को छोटी पकड़कर वहां से खींच कर लाए। छोटे पकड़ कर काला कृष्णदास को लाए अपने चरणों में, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि धन्य है वो प्रभु जो अपने निज दास को छोड़ते नहीं है। इसी तरह ये अघासुर जो थे वो पाप का राशि था, जो बछड़े और बाल बाल उनके मुख में चले गए, पाप में चले गए थे। जिस तरह काला कृष्ण पाप मतलब वो प्रवृत्ति में बछड़े, अब सखाओ की क्या इच्छा थी, कुछ आनंद ले उस गुफा में जाकर, क्या है क्या देखे। वैसे तो देखा जाए तो भगवान के नित्य पार्षद थे वो सखाओ, उनको कोई स्पर्श भी नहीं करता भोग, लेकिन एक शिक्षा देने के लिए ऐसा ये प्रसंग रखा है। जो सखाओ की इच्छा कुछ प्राप्त करने के लिए उस अघासुर के पाप के मुख में गए, जिस तरह काला कृष्णदास गए। लेकिन वहां भी चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है, उनकी रक्षा किए और अपने छोटे पकड़ कर खींच कर लाए, और इधर सखाओं को जो पाप के मुख में गए थे अघासुर के मुख में, वहां उनकी रक्षा किया। तो भगवान हर समय अपने भक्त की रक्षा करते हैं, और जो भक्त होते हैं, जो शरणागत होते हैं, वो भगवान को कभी नहीं छोड़ते। वो कभी किसी भी परिस्थिति में भगवान का शरण नहीं छोड़ते, ऐसे भक्तों को ही भगवान रक्षा करते हैं। जो शरणागत नहीं है और जिसका चित कभी कृष्ण में लगता है कभी भोगों में लगता है, और वो भक्त अगर सोचे कि मेरी भगवान कृष्ण रक्षा करेंगे तो भगवान सुनेंगे, लेकिन इतने नहीं सुनेंगे जिस तरह ये गोप सखाओं की सुनते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से वो शरणागत थे। और जिनका चित दोनों तरफ चलता है, दो नाव में दो पैर रखकर जो चलता है, उसका स्थिति ठीक नहीं होता है, और उनकी भगवान रक्षा करते हैं लेकिन इतने पूर्ण रूप से नहीं करते, और उनको इतना भगवान रक्षा करते हैं क्योंकि वो श्रद्धा जगाने के लिए भक्त की, लेकिन पूर्ण रूप से रक्षा नहीं करते। और उसमें भी कभी बाधा आती है तो गिर जाता है, मतलब उस दो नाव में चल रहा था ना दोनों पांव रखकर, तो उसमें तो गिरने का संभव रहता ही है। जब भगवान रक्षा तो रक्षा करते ही, हर जो भगवान के भक्त नहीं है उनके शरणागत नहीं है उनकी भी रक्षा करते हैं, तो भक्त की रक्षा करते हैं, लेकिन साथ साथ में कभी कभी उनके कर्म के अनुसार कुछ ऐसी घटना घटती है तो सोचने लगता है कि भगवान ने मेरी रक्षा नहीं किया। तो रक्षा नहीं करने के कारण पूर्ण शरणागत तो थे नहीं, तो शरणागत नहीं होने के कारण वो भक्ति मार्ग छोड़कर अन्य भोग विलास में जिस तरह पानी में गिर जाता है उसी तरह वो छोड़कर चला जाता है, गिर जाता है। लेकिन जो शरणागत पूर्ण रूप से रहते हैं उस भक्त की भगवान पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं। तो श्रुत्वा भगवान कृष्ण जब इस तरह देवताओं का हाहाकार सुना भगवान कृष्ण ने, तब भगवान तुरंत ही अघासुर के गले में जो थे वहां तुरंत तरसा भूवृद्धे गले, तरसा मतलब तुरंत अपने रूप को वर्धन करने लगे, बढ़ाने लगे। जब बढ़ाने लगे तब उसका गला बंद हो गया। जब जरूरत पड़ती है तो भगवान कृष्ण विराट रूप भी दिखाते हैं। जब शांति दूत बनकर गए हस्तिनापुर, तब दुर्योधन को कहा कि आप पांडवों को 5 गांव दे दो, ज्यादा नहीं, उसमें संतुष्ट हो जाएंगे पांडव। लेकिन दुर्योधन ने कहा 5 गांव की बात छोड़िए, मैं सोए की नुख रखने के लिए जगह भी स्थान नहीं दूंगा। क्योंकि दुर्योधन ऐसे तो दुर्योधन जानते थे, और ऐसा भी हम समझते हैं कि उसमें उतने 5 गांव देने की क्या दिक्कत है, पूरा विश्व उनके शासन में था दुर्योधन का, तो 5 गांव देने से क्या उनको हानि होता था। अगर कर्ण तो एक देश पूरा अंग देश दे दिया था, कर्ण जब युद्ध में आए थे तब भीष्म पितामह ने कहा कि आप हमारा साथ युद्ध नहीं करते क्योंकि आप राजा नहीं हो, आपके पास कोई प्रजा नहीं है, आपके पास कोई शासन नहीं है। तब उसी स्थान पर कर्ण ने उनको एक राज्य दे दिया था अंग देश, क्योंकि आप अंग देश का राजा बन जाओ। तो 5 गांव देने की क्या दिक्कत थी दुर्योधन को, लेकिन मना कर दिया कि मैं एक सोए रखने की जगह भी नहीं दूंगा। वो जानते थे दुर्योधन कि अगर मैं उनका थोड़ा सा भी स्थान दूंगा तो ये पांडव इतना शक्तिशाली है तो धीरे धीरे विस्तार करके बल के कारण पूरा विश्व को जीत लेंगे और हमें ही हमारा राज्य पराजित करते भगा देंगे। तो इसलिए दुर्योधन ने उनको इतना स्थान भी देने के लिए मना कर दिया। तब भगवान ने कहा कि दुर्योधन तुम्हारा ही अहित कर रहे हो, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा अगर तुम हमारी बात नहीं स्वीकार करेगा तो। लेकिन दुर्योधन भी इसी तरह अघासुर की तरह पाप था पूरा काल, कलि का अवतार माना जाता है दुर्योधन। तो दुर्योधन ने मना कर दिया कि मुझ कुछ नहीं भगवान, और उसी स्थान पर दुर्योधन ने आदेश दे दिया कि जो ग्वाला है, जो ग्वाला गाय को सराने वाला हमें आदेश दे रहा है, उनको बंदी बना लो तुरंत ही। तो जब उनको आज्ञा सुनकर उनके सैनिक सेनापति सब आए भगवान के सामने, तो तुरंत भगवान ने विस्तार किया, विराट रूप प्रदर्शित किया उसी सभा में। लेकिन वो विराट रूप कोई नहीं देख पाया, प्रकाश तेज जो करोड़ सूर्य के समान तेज निकल रहा था, उस सूर्य के समान तेज के कारण सबकी आंखें बंद हो गई, कोई विराट रूप को देख नहीं पाए सिवाय एक भीष्म पितामह, उस विराट रूप का दर्शन कर पाए। बाकी सभी की आंखें उस राज सभा में जो बैठे थे सबकी आंखें बंद हो गई, और भगवान ने विराट रूप दिखाकर उनको कोई बंदी नहीं बना पाए, पर वहां से निकलकर विदुर जी के घर पर चले गए जो उनके शरणागत थे। दुर्योधन ने कितनी तैयारी किया था उनके महल में रहने के लिए, दुशासन का जो आवास था वो सबसे उनके महल हस्तिनापुर के सबसे सुंदर था, वहां पर भगवान कृष्ण को निवास स्थान दिया था, आप वहां रुकेंगे। लेकिन भगवान ने अस्वीकार करके जो सामान्य कुटीर में रहे थे विदुर जी उनके घर पर गए। तो इसी तरह भगवान शरणागत होते हैं उनको दर्शन देते हैं, और जो असुर इसी तरह होते हैं उनको शिक्षा देने के लिए विराट भी रूप देते और अपना विस्तार भी करते हैं। तो दुर्योधन का उधर न सुनकर भगवान तो उनका पूरा कुल का नाश हो गया कौरव का, और भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए पांडवों को राज्य स्थापित करवाया और हस्तिनापुर को राज दिलाया। तो अघासुर के मुख में जब प्रवेश किया तो उनका गला दब गया और वो उनका श्वास निकल गया। जब गला उनका पूरी तरह से बंद हो गया तो उनका श्वास लेने की जगह कहीं से स्थान पर न रही, तब उनका जो चेतन आत्मा था, आगे वर्णन हम सुनेंगे, तो उनका जो मस्तक था उनको फाड़ कर बाहर निकला तेज, अघासुर का तेज मस्तक को फाड़ कर, क्योंकि भगवान ने गले से तो उनका जो स्थान था निकलने का वो बंद कर दिया था, तो उनका मस्तक फाड़ कर उनके चेतन तत्व बाहर निकले। और जैसे ही चेतन तत्व बाहर निकले तब भगवान तो उनके मुख में ही थे, उनका मर गया अघासुर तो उनके चेतन तत्व बाहर निकले और भगवान उनके मुख में थे, भोग सखाओ बसरा और भगवान, तब तक उसकी चेतना थी वो बाहर घूम रही थी पड़े तो तेज, वो देवताओं पर सब देख रहे थे उनका तेज कि अघासुर मर गया है, उनकी चेतन तत्व बाहर घूम रही है। और फिर बाद में भगवान ने जो मूर्छित हो गए थे भोग सखाओ बसरे उनको दृष्टि देकर उनके सामने देखा, तब वो जिस तरह नींद से झकते उसी तरह वो झक कर सब गोप सखा और बछड़े बाहर आए भगवान के साथ। बाहर आने के बाद जब भगवान कृष्ण पूर्ण रूप से उनके मुख से बाहर आ गए, तब उनकी चेतन तत्व जो था उनकी आत्मा वो भगवान के भगवान के सामने आकर उनके शरीर में समा गए, उनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गए। तो वहां प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते आगे हम सुनेंगे कि जब चेतन तत्व उनका बाहर रहा था तब रूपा कहते हैं कि ये प्रदर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण ने कि जो जीव तत्व है वो भगवान से अलग है, भगवान का अंश है लेकिन भगवान के साथ नहीं है, उनका अलग है अस्तित्व अलग है, इसलिए वो तुरंत वो निकल कर अगर देखा जाए उनका तो भगवान के अंदर थे अघासुर के मुख में, वहां भी वो जा सकते थे उनकी चेतन तत्व, लेकिन वहां ने फाड़ कर बाहर निकले और देवताओं सबने देखा कि असुर का आत्मा बाहर घूम रहा है, और बाहर आने के बाद भगवान जब बाहर आए तभी उनके शरीर में सारूप्य मुक्ति प्राप्त की है। और जीव गोस्वामी कहते हैं कि उनको सालुक्य रूप सारूप्य और सालुक्य मुक्ति प्राप्त हुई, मतलब प्रभुपाद कहते हैं दोनों हो सकता है, उनके शरीर में समाप्त हो गए या सारूप्य मतलब भगवान जैसा उनका रूप प्राप्त हुआ जो शत्रुभुज रूप, तो दोनों मुक्ति उनको प्राप्त हुई, उनका भी निर्वाण प्रभुपाद ने किया है, हम सुनेंगे। तो इसी तरह अघासुर का वध करके भगवान उन सखावों को बछड़े को बचाकर बाहर आए और पूर्ण रूप से वो सब निर्भय होकर व्रज में गए, और देवताओं का जो भय था वो भी दूर किया उनको वध करके। और इसी घटना को जब घटे तब एक साल के बाद व्रज में जाकर सखावों बात करते हैं, यह घटना जब अघासुर के मुख में गया तब कृष्ण का कुमार अवस्था थी, लेकिन जब सखावत जब व्रज में जाकर बात करेंगे तब भगवान कृष्ण की उम्र पौगंड अवस्था थी। तो इसी बात इसी जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा तो परीक्षित महाराज तुरंत कहते हैं कि जब ये कैसे हो संभव है कि भगवान जब कुमार था तब ये घटना घटी, और ये जब कह रहे हैं तब पौगंड अवस्था की बात करते हैं, तो एक साल का जो काल समय गया वो कहाँ गया। इसी अंतर्गत एक साल का जो ब्रह्म विमोहन लीला है उस प्रसंग को सुखदेव गोस्वामी फिर बताते हैं कि इसी तरह एक घटना है। तो अघासुर का वध करके अपने प्रिय भक्तों को रक्षा की और देवताओं को भी जो भय था वो दूर किया, और अघासुर वास्तव में वो भी एक देवता ही है, गंधर्व थे, एक अष्टवक्र ऋषि के श्राप के कारण वो अजगर का रूप उनको धारण करना पड़ेगा, तो उनका मुक्ति प्राप्त हुआ और अपने भक्तों की रक्षा की। तो इसी तरह आगे हम श्रवण करते रहेंगे तो भगवान की मधुर लीला का किस तरह अब ब्रह्म विमोहन लीला आगे प्रकट करेंगे सुखदेव गोस्वामी, तो इसका भी हम यथास्वादन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद महाराज की सहिताय गौर प्रेमानंदी।